नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। तमिलनाडु में एक ही चरण के और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। दोनों राज्यों में कल वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कुलटी और सिलीगुड़ी में रैलियों को संबोधित किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस, वामपंथी और अन्य दलों ने भी राज्य भर में प्रचार किया। इस बीच तमिलनाडु में मतदान की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत 23 अप्रैल को कुल 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1478 है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। मतदान 44,376 बूथों पर होगा, जिनमें लगभग 3,000 सहायक बूथ भी शामिल हैं। 5,444 बूथों का प्रबंधन महिलाएं करेंगी, जबकि 207 मॉडल बूथ होंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान की सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वे दोपहर में उत्तर 24 परगना के दमदम और हाबरा तथा हुगली के सप्तग्राम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे तथा सोनारपुर में रोड शो करेंगे। इस्लामाबाद में संभावित अमेरिका और ईरान वार्ता पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं, जिसे ईरान के अड़ियल रवैये और व्हाइट हाउस से मिल रहे बदलते संकेतों ने और हवा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आज समाप्त हो रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने कहा कि ईरान धमकियों के बीच वार्ता नहीं करना चाहता। इस बीच ईरान की सरकारी टेलीविजन ने खबर दी है कि ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल अभी तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद नहीं आया है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वार्ता में अमेरिका के दल का नेतृत्व करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहाँ आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में कल दोपहर एक पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में 2 श्रमिकों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना वाड़ा तालुका के कोनसाई गांव में एक पुराने फार्म हाउस में बनी अस्थायी फैक्ट्री में हुई। अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है। विस्फोट के कारण और इकाई में सुरक्षा मानकों के पालन की जांच की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए लगभग 975 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉल असेंबली की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रॉल असेंबली एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो बारूदी सुरंगों को भेदने की भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहले ही मंदिर पहुंच चुके हैं। केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल है। आईपीएल क्रिकेट में ईशान मलिंगा के 4 विकेट की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने नाबाद 135 रन और हेनरी क्लासन ने नाबाद 37 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल में आज लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। चीन के सानिया में आज से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 6ठे एशियाई बीच गेम्स में 31 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इन गेम्स में 15 खेलों में पदक प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें कुल 62 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। भारतीय खिलाड़ी 3x3 बास्केटबॉल, बीच कबड्डी, नौकायन और बीच कुश्ती में भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।